ओम शांति। ज्ञान को रमणीकता, माधुर्यता, स्पष्टता और गहनता, इन चारों मोतियों की माला पहनाकर आत्माओं को धारण कराने वाली, ज्ञान के गायत्री मंत्र देने और चारों दिशाओं में प्रभु ज्ञान रतन लुटाने वाली हम सबकी प्रिय परम आदरणीय उषा दीदी जी हमारे समक्ष उपस्थित है। हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। वैसे तो दीदी जी का व्यक्तित्व ऐसा है सूर्य के समान, जो परिचय देने की आवश्यकता नहीं, पर संक्षिप्त में परिचय दूंगी। आपका जन्म 1961 में अफ्रीका के जाम्बिया में हुआ, जहां आपका परिवार 74 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आया और 1976 में भारत स्थलांतरित हुआ। फिर जल्दी ही 80 में अपनी तरुण अवस्था में ही शिव पिता के रचे इस यज्ञ में आप बलिहार हो गए, जहां बाबा और दादियों ने आपको खूब श्रृंगारा और संवारा। आपकी विशेषता को देखते हुए दादियों ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 में संस्था द्वारा मुंबई से दिल्ली तक युवा पद यात्रा का कलश आपके सर पर रखा और आपकी उल्लेखनीय सेवाओं की यात्रा तब से आज तक अविरत रूप से चल रही है। वर्तमान समय आप शांतिवन में रहते हुए यहाँ आयोजित कार्यक्रमों की एक प्रमुख वक्ता के रूप में शिविरों, कॉन्फ्रेंस आदि में वक्तव्य एवं प्रवचन की सेवाएं देते हैं। आपने समय अनुसार ज्ञान को नवीनता और विविधतापूर्ण रीति से प्रस्तुत करने की कला द्वारा ज्ञान और सेवाओं को अनेक सुंदर व नए आयाम प्रदान किए। कॉरपोरेट जगत में 92 से गोदरेज, टाटा, अमूल, ओएनजीसी, इफको आदि इंडस्ट्रीज ग्रुप में उनकी भाषा शैली के साथ अति रुचिकर रूप से सेल्फ मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग इत्यादि कोर्स की सेवाओं के आप निमित्त बने। श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के आध्यात्मिक रहस्यों की विशेषज्ञ के रूप में आपको विशेष ख्याति प्राप्त है, जिसके द्वारा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपकी भगवद गीता और रामायण की सूक्ष्म आध्यात्मिक और तार्किक व्याख्या से जन सामान्य सहित साधु संत एवं प्रबुद्ध समाज भी सहमत हुआ। ज्ञान के अतिरिक्त आप योग के गहरे रहस्य को भी बहुत सुगम रीति से सभी के आगे स्पष्ट करते हैं। अनेक टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर आपके प्रवचन के कार्यक्रम प्रसारित होते आ रहे हैं। सेवाओं के चलते आपको 2011 में पब्लिक रिलेशन काउंसलिंग इंडिया द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप ब्रह्मा कुमारीज की पॉलिटिकल विंग में वाइस चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपनी इन्हीं बहुमुखी प्रतिभाओं द्वारा चीन, यूरोप, अफ्रीका, यूएसए आदि में अनेक देशों की यात्रा करते हुए आपने विश्व स्तर पर परमात्म ज्ञान का परचम फैलाया है। तो ऐसे अनुभवों की भंडार हमारी आदरणीय उषा दीदी जी आज हमें निमित्त भाव, निर्माण चित और निर्मल वाणी को जीवन में धारण करने की शिक्षाओं से मालामाल करेंगे। आदरणीय उषा दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी विशेष योग तपस्या करने के लिए आए हैं और उसमें भी अगस्त मास, दादी का मास, क्योंकि ये दादी की कर्म भूमि रही। इस कर्म भूमि में दादी की हर विशेषता समाई हुई है और उसमें भी जो विशेष विशेषता है वो आज का सब्जेक्ट है, निमित्त भाव, निर्माण चित्त और निर्मल वाणी। ये प्रैक्टिकल में देखा गया कि सचमुच दादी कैसे इसका स्वरूप रही, हर बात में दादी अपने आप को निमित्त समझती रही और निमित्त समझते हुए हर कार्य करती रही। इसीलिए हमेशा हल्की रही, कभी बोझा महसूस नहीं किया। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोगों ने प्रकाशमणि दादी को देखा है। जिन्होंने देखा है हाथ खड़ा करो, जिन्होंने देखा है प्रकाशमणि दादी को। अच्छा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो देखे। दादी जी के जीवन चरित्र के अंदर जो दादी ने निमित्त भाव का महामंत्र पक्का किया था, क्योंकि बाबा के विशेष पालना में दादी पलती रही। जिस तरह दादी कभी कभी सुनाती थी कि मम्मा और दादी दोनों क्लासमेट रहे स्कूल में, एक ही बेंच पर बैठते थे और दोनों को बाबा ने विशेष रूप से चुना। मम्मा तो मम्मा थी ही अपनी क्वालिटीज के आधार पर, लेकिन दादी जी को भी बाबा मुन्नी मम्मा कहते थे, छोटी मम्मा, क्योंकि दादी जी के अंदर भी जो गुण थे वो बहुत विशेष थे। जब बाबा ने दादी को निमित्त बनाया इस यज्ञ के लिए, हाथ में हाथ दे करके सारी शक्ति और जिम्मेवारी को बाबा ने सौंपा, तो उस समय से लेकर के दादी जी ने हमेशा यही समझा कि दादी और स्वयं अलग है। दादी कभी भी ये नहीं कहती थी मेरा विचार है, मेरे हिसाब से आपको चलना होगा, मेरे हिसाब से करना होगा। दादी के मुख से हमेशा यही निकलता था, दादी का ये विचार है। माना जिस बाबा ने दादी को निमित्त बनाया वो इतना कॉन्शियस में रहता था, तो दादी कहती थी दादी का ये विचार है। माना खुद को और दादी उस स्टेटस को जैसे अलग कर देती थी दादी, और इसलिए निमित्त भाव में रहना उनके लिए आसान था। दादी ये बाबा के द्वारा दिया गया एक जिम्मेवारी वाला कर्तव्य निष्ठ जैसे स्वरूप था, लेकिन खुद को दादी हमेशा अलग समझती थी, इसीलिए निर्माणता सहज थी दादी के जीवन के अंदर। क्योंकि दादी ने कभी भी अपने आप को हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझा, कई बार कई लोग दादी से पूछते थे, मुझ आत्मा को भी ये सौभाग्य मिला दादी के साथ में पल पल यहां हर कर्म करते हुए देखते हुए। और विशेष जब कोई भी वीआईपी आते थे तभी उनको मिलाने का कार्य भी जैसे बाबा ने मुझ आत्मा को दिया। तो उस समय मैंने यही देखा, कई लोग दादी से पूछते, दादी आपको कभी टेंशन नहीं होता है? दादी यही कहती थी, टेंशन उसको होता है जो अपने आप को हेड समझता है। मैं हेड समझती नहीं इसलिए हेडेक होता नहीं है ना, हेड समझो तो हेडेक होता है। मैं हेड समझती नहीं इसलिए हेडेक होता नहीं है। तो निर्माणता जो उनके अंदर थी, निमित्त भाव कराने वाला बाबा है, बच्चे बाबा के हैं, मैं क्यों टेंशन लूं? बाबा ने मुझे निमित्त बनाया और बाबा करा रहा है। तो निमित्त भाव के लिए सबसे पहली धारणा जो है दादी की, करण करावनहार बाबा करा रहा है। ये बात इतनी अंदर में पक्की थी और इसलिए बाबा जैसे चला रहा है, बाबा जैसे करा रहा है, तो दादी को संकल्प नहीं चलता था। दादी अपने आप को जैसे विशेष सेवाधारी के रूप में समझती थी। ये जरूर है कि निमित्त बनने का भाग्य बहुत ऊंचा है। निमित्त माना बाबा अगर जिम्मेवारी दे उसके लिए निमित्त समझना, उसको ही निमित्त कहा जाता? नहीं, निमित्त समझना माना नियम मर्यादा नीति और सभ्यता, चार चीजों में निमित्त बना होना चाहिए। नियम सबसे पहले कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने नियम दिए हैं, उसके लिए जो श्रीमत मिली है, उस श्रीमत के अनुसार हर कर्म हो। कहीं भी नियम को तोड़ना मरोड़ना नहीं। दूसरा है मर्यादा। जो मर्यादा की लकीर बाबा ने खींच कर दिया है, उस मर्यादा की लकीर से एक कदम भी बाहर निकालना नहीं, संकल्पों से भी बाहर नहीं निकलना। नीति, बाबा की नीति है कि बच्चे भाई भाई स्वरूप में देखो, दृष्टि रखो, भाई भाई की दृष्टि को विकसित करो, ये नीति है हमारी। और सभ्यता, सभ्यता ये है कि जो व्यवहार और कर्म हो वो सदा ही निर्माणता पूर्वक हो, हर बात में स्वयं को आगे करना नहीं, दूसरों को पहले आप करना, ये सभ्यता है। तो निमित्त भाव विकसित करना माना नियम मर्यादा नीति और सभ्यता में बहुत श्रेष्ठ, उसको कहते हैं निमित्त बनना। दादी के जीवन के अंदर पहले से ही ये चारों बातें थी, इसीलिए बाबा ने निमित्त बनाया उनको। विशेष सेवा अर्थ या विशेष जिम्मेवारी के लिए निमित्त बनना होता है, जहां दूसरों को पहले आप करना होता है कोई भी कार्य में, लेकिन जहां जिम्मेवारी हो और विशेष सेवा हो वहां अपने आप को ऑफर करके चलना, इसको कहते हैं निमित्त भाव।
निमित्त आत्मा को हमेशा ये बात स्मृति में रहती है कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख अनेक करेंगे। तो अनेकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ये हर वक्त एहसास रहना कि मुझे कौन देखता है ये नहीं, मुझे सब देख रहे हैं, मैं विश्व स्टेज पर हूं, सारी दुनिया की आत्माओं की नजर मेरे पर है। ये नहीं कि हम कैसे भी चले कैसे भी रहे, कौन देखता है हमें, बाबा देख रहा है, विश्व देख रहा है। किस समय कौन सी आत्मा की नजर आपके ऊपर पड़ जाए पता नहीं चलता है। तो निमित्त भाव रखते हुए हर वक्त वो निर्माणता हमारी बनी रहे, और उसका बहुत सुंदर भाव है निर्मल वाणी। स्वभाव व्यवहार वाणी इसके अंदर निर्मलता हो, पवित्रता हो, शुद्धि हो, अंदर कुछ बाहर कुछ ये ना हो। लेकिन इतनी ट्रांसपेरेंसी निर्मलता हो जैसे निर्मल जल होता है, प्योर जल जिसको कहा जाता है, ठीक इसी तरह हमारे स्वभाव संस्कार व्यवहार में भी जो अंदर वही बाहर, कोई उसमें हेर फेर नहीं, कोई उसमें पॉलिटिक्स ना हो, उसको कहा जाता निमित्त बनना। बड़ी दादी जी के अंदर यही सबसे बड़ी विशेषता देखी कि हमेशा इतनी ट्रांसपेरेंट रही कि कोई भी उनको पढ़ सकता था, उनके मन के भाव को पढ़ सकता था कि इस वक्त दादी के मन में क्या चल रहा है। इतनी निर्मलता। कई बार किसी ने आकर के दादी को कह दिया कि दादी देखो ये काम करना होगा, नहीं करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, तो दादी जी को आ जाता था बात, सत्य मान लेते थे कि अच्छा ऐसा होगा, और जाकर के अगर जिसको कहना होता था उसको कहते देखो तुमको ये करना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा। कई बार दूसरी दादियां भी और बड़े जो दादी के अंग संग रहते थे तो हंसते थे, अच्छा दादी पढ़ाया हुआ पढ़ लिया बोल लिया आगे, अब जितना पढ़ाया होता था दादी को उतना ही वो बोल पाती थी, उसके आगे कभी वो सोचती नहीं थी कि भाई ये किस लिए, तो यही कहते थे अच्छा पढ़ लिया आपने बोल दिया, दादी ये डरा लिया आपको है ना, ताकि आपके द्वारा वो बुलवाना चाहते हैं, तो आपने सच मान लिया और वही बोल दिया। दादी कहती अच्छा ऐसा भी होता है क्या, माने इतनी निर्मलता, इतनी निर्मलता, इतनी प्यूरिटी कि कभी किसी को भी जज नहीं करना, अच्छा ये बोल रहा है अपना मतलब सीधा करने के हिसाब से बोल रहा है और मुझे पढ़ा रहा है। दादी इतनी निर्मल और प्योर थी, इतना हृदय शुद्ध था दादी का। बाबा मम्मा तो थे ही हमारे बहुत ऊंच महान, लेकिन बाबा के इस परिवार के नींव में भी अगर इतने महान आत्माएं थी, दादियां जो थी इतने निर्मल थी कि उनके स्वभाव के अंदर निर्माणता सहज झलकती थी। तो इसलिए कहा कि हमेशा दादी यही समझती थी जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, है ना। अथॉरिटी होते हुए भी कभी आपको ऐसा करना होगा, ऐसे कभी दादी ने नहीं कहा। दादी ऐसा समझती है कि आप ये करें, ये निर्माणता थी दादी के अंदर। मुझे याद आता है कि मैं तो बहुत छोटी थी, यहां आई थी तब, लेकिन जब मैं सेंटर से यहां एक ग्रुप लेकर के आई शिविर का, और उसी उन्हीं दिनों में गवर्नर को आना था, तो उनको कोर्स करने की इच्छा हुई। उसने मैसेज भेजा कि मैं कोर्स करना चाहता हूं। दादी को लगा अभी कौन कराएगा, कौन कराएगा, कौन कराएगा, और उसी में उसी समय मैं ग्रुप को लेकर के आई। तो मधुबन के भाइयों ने कहा, दादी अभी आपका टेंशन खत्म हो गया, ये आई है ना, इसको रोक लो। तो दादी ने उस समय मेरे को बुला करके कहा कि तुम कितने दिन के लिए आई है। मैंने कहा 5 दिन के लिए, शिविर के साथ आई हूँ, शिविर के साथ जाऊंगी। कहा नहीं, टिकट कैंसिल कर लो, आपको यहाँ गवर्नर का कोर्स कराना है। कहा ठीक है दादी, जैसे कहो। टिकट कैंसिल करा दिया। उसके बाद दादी को महसूस हुआ कि ज्ञान सरोवर बन रहा है, और अभी सेवा के कार्यक्रम बढ़ेंगे, विंग्स बन गई है, तो अपने यहाँ पर भी हैंड्स को बढ़ाना चाहिए। तो उस समय दादी के मन में आया, तो दादी ने मेरे को बुलाकर कहा कि देखो, दादी की इच्छा है कि तुम यहाँ रहो, लेकिन फिर भी दादी तेरी इच्छा जानना चाहती है। अगर तुम सेंटर पर ही जाना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। दादी की इच्छा है कि तुम यहां रहो, बोलो तुम क्या करना चाहती हो। मेरे मन में उस वक्त आया कि दादी अथॉरिटी है, हम सब बहनों के लिए दादी अथॉरिटी है। दादी का एक शब्द माना, उसको सिर माथे करके हम पालन करने वाले शक्ति सेना है, हमारी सेनानी है ये। हमको खाली ऑर्डर करना होता है दादी को। मैंने जब दादी को कहा, दादी आप ये रिक्वेस्ट नहीं करो, आप खाली आज्ञा दे दो। कहा नहीं दादी, तेरा भाव जानना चाहती है। अब बताओ, इतनी निर्माणता, मेरे से डबल क्या 3 गुना दादी की एज थी, और फिर भी इतनी बड़ी दादी मेरे को इतना निर्माण होकर के पूछे तेरी क्या चाहना है। इतनी निर्माणता, इतनी निर्मलता से, निर्मल वाणी से दादी पूछे। आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरे मन में ऐसा आया कि देखो, बाबा ने कैसे बनाए हैं एक एक मूर्ति को, कि हमेशा अपने आप को निमित्त समझकर चलना, माना कहीं अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं करना, छोटी सी बात के लिए भी अथॉरिटी नहीं चलाना। नहीं तो कह सकते, तुम अभी सेंटर छोड़ो, यहां आ जाओ, तेरे जरूरत यहां है, कह सकती थी ना दादी, तो अथॉरिटी थी। नहीं दादी, तेरी भावना जानना चाहती है। और ये दादी ने हर कर्म करते हुए सिखाया हम सबको, माना निमित्त बनना, माना उदाहरण मूरत और उदारचित, भावनाओं में भी इतनी उदारता, कहीं संकुचितता नहीं, उदारता विचारों में, भावनाओं में, हर बात में जैसे कि बाप समान देखा उनको, उदाहरण मूरत, हर काम जैसे मुझे पहले करना है और मैं जैसा करूंगी वैसा। ओम शांति भवन जब बन रहा था, सुबह मुरली क्लास के बाद दादी कहती थी, चलो 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 सभी, है ना, और दादी खुद तगारी उठाती थी। हमने देखा है दादी को तगारी उठाते, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, सब लाइन में खड़े हो जाओ, बाद में नाश्ता करने जाएंगे सभी। ये पत्थर जब तोड़ते थे जहां सीढ़ी बनी हुई है, वो सीढ़ी का जब पत्थर थोड़ा थोड़ा उसको लेवल करने के हिसाब से तोड़ा था और सारा वहां पर जो पत्थर तोड़ करके गिरता था, तो उसको उठाने के लिए दादी खुद खड़ी हो जाती थी और उसके बाद जैसे पूरा साफ हो जाता था, इतने भाई बहनें तगारी उठा करके खड़े हो जाते थे। तो उदाहरण मूरत जो कहा, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। और इस तरह से जैसे पूरा करके सारा सफाई करवा करके दे दिया सबको, अब आप जो बनाना है करना है ना। और फिर दादी कहते अब सब नाश्ते के लिए चलो। और नाश्ता करने के हिसाब से भी खुद पहले नहीं बैठती थी, पहले सब किचन में जाती थी। और ये दिन जो फागी वाले दिन होते थे, बारिश के दिन, दादी कहती थी अंगीठी जलाओ। अंगीठी सामने रखते थे, उस पर ऐसी पूरी जितनी रोटियां बना करके उसके ऊपर मक्खन डाल करके एक एक को मुंह में खिलाना, सेवा करके आए ना सभी, ताकत तो चाहिए, ये पालना थी। तो निमित्त बनना मना ऐसी पालना भी देना, सेवा भी करना और कराना और पालना भी देना, इतने निर्माणता से एक एक को मक्खन मानी खिला करके ताकत भर के जैसे शक्ति भर देती थी कि उसके बाद अगर कोई को भी कहे हर रोज अभी क्लास के बाद वहां खड़े हो जाना है, दादी को दूसरे दिन कहना नहीं पड़ता था, दादी बस खड़ी हो जाती थी, सारे लोग खड़े हो जाते, लाइन लगा देते थे, तगारी पास करना शुरू करते थे। इसी तरह ज्ञान सरोवर भी जब बना, तो सरोवर जो है वहां की सारी मिट्टी निकाल करके वो सरोवर जो बना है, जो हॉल बना है वहां पर सब लाइन से खड़े हो जाते थे। तो हर कर्म करके जैसे दादियां कहती थी कि बाबा धोबी घाट में खड़ा हो जाता था, बाबा कभी अनाज सफाई में चले जाते थे खुद साफ करने, सारे बच्चे जैसे पहुंच जाते थे वहां पर, हर एक टाइम में सारा अनाज सफाई हो जाता था। तो ये बाबा से ही उन्होंने सीखा और जो कर्म बाबा ने किया वैसे ही कर्म करके प्रैक्टिकल में सिखाया। तो इसीलिए कहा निमित्त बनने की का जो भाग्य है वो तब बहुत बड़ा होता है कि उसके साथ निर्माणता और निर्मल वाणी। दादी को कभी हमने किसी को डांटते हुए नहीं देखा, डांटना ही नहीं आता था दादी को। दादी अगर बात पूछती थी उनको, ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, पूछ लेती थी। हाँ, कभी ऑफिशियल हो जाती थी और जो सुनाना होता था क्लास में सुना देती थी, जिसके प्रति होता था वो समझ जाता था दादी ने आज मुझे कह दिया। लेकिन बड़े प्रेम से निर्माणता से दादी कहती थी, इशारा देती थी। तो इसीलिए कहा कि तब जाकर के ये निमित्त बनने का भाग्य बहुत ऊंचा बनता है। निमित्त बनना माना ट्रस्टी बन जाना, ट्रस्टी होकर के कारोबार को संभालना, जहां आसक्ति नहीं हो, अनासक्त वृत्ति हो और अनासक्त वृत्ति के साथ ट्रस्टी बनकर के कारोबार को चलाना, ये बाबा का कार्य है और बाबा ने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। उस जिम्मेवारी को बड़ी वफादारी से अदा करना, लेकिन उसके बाद न्यारा हो जाना, जिम्मेवारी संभाली भी पूरी वफादारी से, फिर डिटैच हो जाना। दूसरे शब्द में मैं कहूं तो बालक और मालिकपन का बैलेंस, निमित्त बनना माना बैलेंस, संतुलन, बहुत सुंदर। मालिक बनकर के सारा कार्य भी किया, अपना राय भी दिया, लेकिन उसके बाद ऐसे डिटैच हो जाए जो बालक बन गए। सभी ने अगर स्वीकार किया तो बहुत अच्छा, नहीं स्वीकार किया तो फिर उसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन उसको समझते हुए फिर उसमें मोल्ड होने की भी ताकत हो। परिवर्तन जहां करना है वहां ये नहीं कि मैं अथॉरिटी हूं इसलिए मैंने जो राय दिया, मैंने जो विचार दिया वही होना चाहिए, नहीं। दादी जी को जब भी कोई विचार आता था, मधुबन निवासियों को दादी विशेष उस दिन शाम का क्लास कराती थी, फैमिली मीटिंग उसको हम लोग कहते थे कि आज फैमिली मीटिंग है, दादी के मन में जरूर कोई विचार आया होगा, वो फैमिली के साथ शेयर करती है और सभी की राय जानती है, आप लोग क्या समझते हो ये हमें करना चाहिए, क्योंकि मधुबन वाले जो करेंगे फिर सारा विश्व फॉलो करेगा, हर सेंटर वाले फॉलो करेंगे। तो इसीलिए दादी मधुबन वालों की एक फैमिली मीटिंग करके और उस फैमिली मीटिंग के अंदर उस बात को रखती थी। फिर जब जो सबकी राय होती थी, और दादियां थी, भाई थे, सब वरिष्ठ भाई थे, उन सबकी जो राय होती थी उसको स्वीकार करना, और अगर मोल्ड करने वाली हो बात तो मोल्ड भी करने की तरीका आना चाहिए, मोल्ड होना भी रियल गोल्ड जो बाबा कहते हैं, मोल्ड होना इतना मुलायम जो मोल्ड हो जाए, और जैसा स्वरूप उस सेवा को देना होता या उस प्लान को देना होता वो दादी मोल्ड होकर के नए तरीके से उसको स्वीकार भी कर लेती। कोई अगर कहे दादी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे, तो सबकी बातों को सुन करके उसको सम्मान देना, सम्मान देते हुए मोल्ड हो जाना और उस ढंग से वो कार्य बहुत सुंदर तरीके से हो, ये हमेशा ये रखना कि बाबा का ये कार्य बहुत सुंदर होना चाहिए। एक व्यक्ति का विचार और सबकी राय का जो बनता था स्वरूप वो और ही निखर के आ जाता था। तो इसीलिए निमित्त बनना माना ट्रस्टी होकर के अनासक्त वृत्ति रखते हुए वफादारी से कार्य को संभालना भी, करना भी, डिटैच होना, बालक सो मालिक बन जाना या मालिक सो बालक बन जाना, ये कला भी विशेष आना चाहिए। बालक बन करके दूसरों की राय को भी सम्मान दे करके उस अनुसार मोल्ड हो जाना, ये है निमित्त भाव, इतने निर्माणता। इसलिए ये तीनों चीजों का एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर व्यक्ति निमित्त है तो निर्माणता है ही, और निर्माणता है तो निर्मल वाणी उसकी होगी। ये हो नहीं सकता है कि वाणी में कठोरता हो और कहे निर्माणता है, ये नहीं हो सकता है। कठोरता है माना निर्माणता नहीं, वहां अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां निमित्त भाव ही नहीं है। तो ये तीनों का बहुत गहरा संबंध है जो प्रैक्टिकल स्वरूप दादी जी के अंदर देखा। सुबह अमृत वेले जब दादी उठती थी तो यही समझती थी, आज का दिन मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, परम नाम से जैसे अवतरित हुई है, किस लिए? आज के सारे दिन का कारोबार करने के लिए। तो ये है निमित्त भाव कि मैं अवतरित हुई आत्मा हूं और आज के दिन अवतार बन करके मुझे हर कर्म करना है, ये निमित्त भाव। साथ ही साथ इसलिए उसमें मैंपन और मेरापन नहीं आता, उत्तरित अवतार हूं ना, अवतार को मैं थोड़ी आता है, मेहमान हूं मैं इस दुनिया के अंदर। और मेहमान समझ करके जब अवतरित होते हैं तो उसमें मैंपन मेरापन नहीं आता है, जो है बाबा का है, बाबा कराने वाला है, बाबा करा रहा है। वो सहजता से उसके स्वरूप में, उसके कर्म में आ जाता है। तो जहां वो मैंपन अभिमान वाला या अहंकार वाला न हो, ये है निमित्त भाव, इंस्ट्रूमेंट। इंग्लिश में उसको हमेशा ट्रांसलेट किया जाता निमित्त को इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं ये कार्य करने के लिए, चलाने के लिए, ये जिम्मेवारी जो सौंपी है उसको निभाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। बस इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वो कार्य करता है और डिटैच, रख दो इंस्ट्रूमेंट को, कार्य के लिए यूज करो और फिर रख दो उसको। ठीक इसी तरह अपने आप को भी ऐसे समझना कि जो कार्य के लिए बाबा ने मुझे चुना है वो कार्य कर लिया और न्यारे हो गए। इसलिए हल्कापन रहता था दादी के नेचर में। दादी को कभी भी ये शिकायत नहीं सुनी दादी के मुख से, क्या सारी रात मुझे नींद नहीं आई ना? सारा दिन का कारोबार करने के बाद भी 18-19 घंटा दादी काम करती थी, 10-10:30 बजे तक। हाँ, हम जब गुड नाइट करने जाते थे दादी के कमरे में, तो गुड नाइट करने जब जाते थे तभी भी दादी कहती थी बैठो मुरली सुनाती हूं। रात की मुरली सुना करके फिर सोती थी, दूसरे दिन के लिए पढ़ना होता था तो रात को ही दादी पढ़ती थी, तो हम लोगों को कहती थी बैठो मुरली सुनाती हूं, और मुरली का सार सुना देती थी। उसके बाद पूरी मुरली पढ़ने के बाद एक सेकंड में दादी को नींद आती थी, एक सेकंड में। कभी ये नहीं कि दादी को करवटें बदलनी पड़ी, कोई बात दादी को अंदर एकदम सताती रही, ये कभी नहीं हुआ। तब कहा कि दादी, दादी और स्वयं को जैसे अलग, वो दादी का पार्ट पूरा हुआ, अब खुद हल्के होकर के सो गई। इसीलिए उनको कभी हेडेक हुआ हो, सर दर्द कर रहा है, रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलनी पड़ी, ये चीज कभी देखी नहीं दादी के साथ। दादी के साथ कई बार सफर करने का भी मुझे चांस मिला। जब दादी के साथ जाते थे टूर पर भी, तो भी दादी इतनी हल्की रहती थी। कभी किसी बात के लिए दादी को न क्रोध करते देखा, गुस्सा करते देखा, ये चीज ही नहीं थी। उसको कहते हैं निमित्त भाव। निमित्त जो होता है, गुस्सा तो तब आएगा ना जब व्यक्ति के अंदर अहंकार हो, और अहंकार के कारण जो कही हुई बात किसी ने न मानी तो गुस्सा आएगा ना। दादी ने कहा, एक दो बार कहा, अगर सामने वाले ने उसको नहीं किया, दादी किसी और को बुला, अच्छा तुम कर लो, उसको शायद अभी टाइम नहीं है या जो भी है। पॉजिटिव दादी कभी किसी के लिए नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिवली के हो सकता है टाइम नहीं है उसके पास, तुम कर लो चलो। फिर उसको कह, मैंने वो बात उसको कह दिया है, वो कर लेते हैं, आप बिजी है ना, कोई बात नहीं। इतना बड़ा कारोबार, और इसीलिए बाबा के समय तो ये संस्था बहुत छोटी थी, लेकिन जो वृद्धि हुई 140 देशों में, वो तो दादी के होते वृद्धि हुई ना। आज भारत के भी अगर तालुका लेवल तक सेंटर्स है अपने, इतनी वृद्धि हुई तो ये तो दादी के समय ही हुई है ना। तो इसीलिए दादी को देख करके ही तो बहनों ने अपने जीवन को भी समर्पित किया। जिसका लीडर ऐसा हो तो नेचुरल है कि उसकी सेना फिर कैसी हो सकती है। तो प्रैक्टिकली दादी को हर बात में, कई बार जैसे कोई मेहमानों को हम मिलाने लाते थे, दादी ये मेहमान आए हैं, कोई कंपनी के बड़े हो या कोई विशेष व्यक्तित्व हो, तो उसको जब दादी को मिलाने लाते थे तो भी दादी मैं होती थी शीलू बेन, हम शिविर वाले को जब मिलाते थे तो दादी कभी भी शिविर वालों के सामने हमें उषा या शीलू कह के नहीं बुलाती थी, उषा बहन, शीलू बहन। हमने एक बार दादी को कहा, दादी आप अच्छे नहीं लगते हैं हमको बहन। अरे जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, आप उनकी टीचर हो, शिविर कराती हो, उनका भाव है आप में, और उस भाव के प्रति अगर हम रिगार्ड न रखे तो उनको आएगा देखो इनको रिगार्ड ही नहीं है, इतने अच्छे अगर इनके पास हैंड्स है तो भी उनको रिगार्ड नहीं है। दादी की ये बात सुनकर के अंदर में ऐसे गूस पिंपल्स हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतनी बड़ी दादी। और ये सिखाती थी हम लोगों को भी कि देखो आप शिविर कराती हो, उनको उनका आप में भाव है, आपके प्रति उनके अंदर जो भावना है बहुत ऊंची है, क्या आपने उनको आध्यात्मिक लेसन दिया इसीलिए भावना कितनी ऊंची होगी, और उनके सामने फिर हम आपको नाम से बुलाएंगे तो उनको क्या आएगा, इनके बड़ों को उनके प्रति रिगार्ड ही नहीं है। इसलिए उस भावना को टूटने नहीं देना है, ये दादी की सीख होती थी। दादी हमेशा हम लोगों को ये शीलू बहन, कोई भी बात पूछनी होती थी, शीलू बहन आपने ये कराया, उषा बहन आपने ये बात समझाई, अच्छा मैं प्रश्न पूछती हूं। तो दादी उस भावना को मेंटेन रखती थी, उस भावना को कभी टूटने नहीं देती कि आपने लेसन दिया है इसलिए आपके प्रति उनका रिगार्ड है, उस रिगार्ड को मुझे मेंटेन करना है, मुझे मैं तोड़ नहीं सकती हूं। आप सोचो सोच कैसी, ये है निमित्त भाव, इसको कहते हैं निमित्त भाव, कि जहां दादी कभी भी हर एक को सम्मान देते हुए रिगार्ड देते हुए सिखाती थी, है ना। तो इसलिए हमारी दादी जैसे विश्व की दादी हो गई, आज विश्व की दादी हो गई। बाबा ने ऐसे ऐसे रत्न चुने थे, और सचमुच लास्ट में जब दादी की संपूर्णता को प्राप्त कर लिया दादी ने, तभी भगवान ने भरी सभा में कहा कि दादी 95% संपूर्ण हो गई है, भरी सभा में कहा था। 5% जो थोड़ा बहुत है वो बाबा का ग्रेस मार्क्स उसको मिल जाएगा, 95% भरी सभा में बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि आपकी दादी 95% हर बात में पास विथ ऑनर है। भगवान ऐसा सर्टिफिकेट दे भरी सभा में, आप सोचो दादी का व्यक्तित्व कैसा होगा, है ना। कोई भी बात में कभी भी दादी के मन में ये नहीं कि ये कहीं मेरे से आगे ना चली जाए, नहीं। मधुबन वालों को जब दादी के मन में आया कि तुम SML कराती हो, सारा दुनिया में कराती हो सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स, तो मधुबन वालों को कराओ ना। तो मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, मधुबन वाले सब बड़े बड़े, दादी ने कहा नहीं, रोज रात को तुमको एक घंटा ये मधुबन वालों को जो है ना SML कराना है। दादी ने घर वालों से पूछा, कराए ना ये? बोले हाँ कराए, है ना। तो यहाँ ये मेडिटेशन हॉल में ही रोज रात को 9 बजे सारे लोग बैठ जाते थे, दादी की आज्ञा थी। आज्ञा सिर माथे हो जाती है, फिर ऐसी आत्मा जब आज्ञा करे तो सिर माथे सब बैठ जाते थे। 9 बजे से 10 बजे तक दादी को वंडर लगा, सारे के सारे ऊपर बोले। दादी जब आंगन में निकली, कोई बंदा नहीं आंगन में, सब कहाँ है, दादी भूल गई बोल करके, तो पूछा कहाँ है, तो कहा कि दादी सब SML कर रहे हैं, ऊपर कोर्स कर रहे हैं। तो जब कहा कि दादी सब मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, दादी जब 10 बजे में नीचे उतरी, दादी मेरे को कहती है, इधर आओ, ये कोर्स कितना दिन चलने वाला है तेरा? मैंने कहा दादी बहुत बहुत, तो 15 दिन चलेगा, रोज का 1 घंटा तो 15 दिन चलेगा। नहीं तुम चलाती रहो ना उसको, 6 महीने तक चलाती रहो। इन लोगों को बांधना, बोले ये मधुबन वालों को बांधना बड़ा मुश्किल है, तुम बांधती हो, देखो कोई बंदा नहीं होता, 6 मास चलाओ इस कोर्स को। मैंने कहा दादी इतना मटेरियल नहीं मेरे पास। इतनी दादी को खुशी होती थी। उसके बाद दादी कहती थी, अच्छा तेरी कैसेट करी है, उसने रिकॉर्ड किया है? मेरे को उस जमाने में कैसेट होती थी। दादी कहती थी मेरे को तेरी कैसेट दे देना, मैं सुनूंगी। क्या सुनाती है तुम? सुनने के बाद दादी मेरे को कभी बिठाती थी, अच्छा बताओ क्या बताया तुमने आज, क्या बताया? फिर बताती थी तो दादी कहती थी, अब मैं तेरे को बाबा की मैनेजमेंट सिखाती हूँ, बाबा की मैनेजमेंट कैसी होती है। दादी माना इतना जैसे जोश भर देती थी। हमें जो बनाया है ना, दादी ने बनाया है। अगर दादी नहीं होती थी तो शायद हम नहीं बन सकते थे, इतना आगे नहीं आ सकते थे। इतना आगे बढ़ाने का जो कार्य था ना, ये दादी का था। दादी को कभी ये नहीं होता था कहीं ये मेरे से आगे ना, कभी नहीं। जो दूसरों को आगे करता है ना, वो खुद आगे ही रहता है, वो कभी उसको वो पीछे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है दादी, दादी कैसे आज हमारा अगर यज्ञ इतना विस्तार हुआ है, इतने बाबा के बच्चे अगर बने हैं, तो उसका कारण है कि दादी ने अनेकों को अपने जैसा बनाया भी है ना। और जब बनाया है तो देखते हैं प्रैक्टिकल उसका स्वरूप। तो निमित्त भाव कहीं पर भी वो मैंपन मेरापन नहीं, इतनी निर्माणता और इतनी निर्मल वाणी, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा दादी का रहा, अंत तक मुस्कुराता हुआ चेहरा रहा, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। आज ये टॉपिक के बारे में सोचते सोचते दादी की एक एक बात सामने आ रही थी, और इसीलिए वो सारी बातें, अभी तो बहुत बातें हैं, तेरा दिन सुन सकते हैं, लेकिन आपको आगे क्लास भी तो है ना, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। कहानियां ऐसी है दादियों की, बहुत सुंदर कहानियां हैं। ओम शांति। हमको ज्ञान सरोवर जाना है आगे, अभी विज्ञान सरोवर जाना है। Oh,
हम एक बार जोरदार तालियों से दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। सभी खो गए थे दीदी जी।